वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सदेवं साद्वैतं सावधूतं सञ्जनासहितं कृष्णचैतन्यमेवम्
संबंध है तो इसके बाद जो कर्म करते हैं उसको भक्ति बताते हैं। भक्ति है अभिधेय, भक्ति मूलक सेवा करना इसको अभिधेय बोलते हैं। और कर्म करने के बाद जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उसको प्रयोजन सिद्धि बताते हैं। तो प्रयोजन सिद्धि क्या है? कृष्ण भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा हम लोग को? जब लोग कृष्ण भक्ति करते हैं क्या प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति करते हैं लोग? फ्रेंड, लिबरेशन नहीं, जीवन का लक्ष्य लिबरेशन नहीं है, मुक्ति पाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, एक गोल है, ये मुख्य लक्ष्य नहीं है। संसार दुख के प्राप्त, संसार दुख दूर करने के लिए हम लोग भक्ति करने के लिए इधर आए ही आए। भक्ति करने का उद्देश्य संसार से छुटकारी पाने के लिए नहीं, इस संसार दुख से छुटकारी पाने के लिए नहीं। जो भक्त होता है, ब्रह्मा जी ने भागवत में भगवान कृष्ण के पास प्रार्थना करते हैं, सत्य अनुकंपा सुमान भूंजान एवं आत्म कर्म विभागम सिद्धवाक बी विधान नमस्ते जब जीवे तक मुक्ति पद गाय भाग। जो आत्यंतिक मुक्ति कृष्ण प्रेम होता है तो किसी को प्राप्त होता है? सत्य अनुकंपा सुमान, जो आपका पूजा उपासना नमस्कार करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आपका कर्म का अनुसार फल भी भोग करते रहते हैं। जो आपका भक्त होता है वो कभी प्रार्थना नहीं करता है मेरा कर्म फल से मेरे को छुटकारी मिलना चाहिए, वो प्रार्थना करता है मेरा जन्म जन्मांतर जैसे आपका चरणारविंद में अहित की भक्ति रहना चाहिए। तो प्रेम प्रयोजन होता है, ये सिद्धि है जीवन का। कृष्ण प्रेम, ये जगत में सब आनंद का उच्च होता है प्रेम। अब प्रेम का मतलब क्या? प्यार करना, तो किसी को प्यार करना, भगवान के साथ प्यार करना, प्रेम संबंध इस जगत में किसी के साथ नहीं होता है। ये प्रेम शब्द इस जगत में व्यवहार के योग्य नहीं है। प्रेम शब्द सिर्फ जीव और भगवान के बीच में प्रेम होता है, जीव जीव के साथ प्रेम नहीं होता है। लेकिन हम लोग जीव जीव से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? प्यार करते हैं किसी को? आप लोग प्यार करते हैं? करते नहीं? हाँ, आपका बच्चा को, बच्ची को, वाइफ को, पिताजी को प्रेम करते हैं ना? तो प्रेम नहीं है, वो क्या है? वो काम है। तो प्रेम जैसे लगता है लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम का है विकृत प्रतिफलन होता है। तो काम बोलते हैं हम उसे, तो मैं दोस्त प्रेम करता हूँ उनके साथ, प्रेम नहीं है। प्रेम कभी जीत जीत प्रेम नहीं कर सकता है, जिस तरह भगवान के साथ प्रेम कर सकता है। तो उसका मतलब क्या है? तो हम लोग किसी को प्रेम नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो प्यार करेंगे जब भगवान का रख के किसी के साथ प्यार करेंगे, वो प्यार को प्रेम बोलते हैं। भगवान को भगवान को निकाल के जिसे प्रेम करते हैं उसका काम बोलते हैं। जीव जीव के साथ प्रेम कर सकता है लेकिन वो प्रेम सिर्फ भगवान को केंद्र करके हो सकता है। कृष्ण को केंद्र करके जो प्रेम होता है वो जीवन का लक्ष्य होता है। और प्रेम प्रयोजन है, वो सिद्धि है जीवन का, वो सिद्धि है। ये प्रेम आनंद का उच्च होता है। ये जीव आनंद जीव का स्वरूप लक्षण है, आनंदम ब्रह्म होता है। और जीव का और भगवान का आनंद किससे मिलता है? जीव का और भगवान का आनंद मिलता है जब जीव भगवान को प्यार करता है, प्रेम करता है। तो प्रेम प्राप्त करके भक्त का प्रेम से भगवान का आनंद आता है। और जब भगवान भक्त से प्रेम प्राप्त करते हैं तो इसका रिटर्न क्या देता है, वापस क्या देता है? न सो माधुर्य आस्वादन कराते हैं। हम लोग अच्छा देखने के लिए देखने से आनंद पाते हैं, हम लोग अच्छा खाने से आनंद पाते हैं, अच्छा चीज ग्रहण करने से आनंद पाते हैं, अच्छा चीज श्रवण करने से आनंद पाते हैं, जी पाते हैं। लेकिन इस जगत में कुछ अच्छा चीज ही नहीं, सब कुछ सुंदर चीज भगवान कृष्ण का अंदर में। तो हमारा जो सुख का आनंद हम लोग पाने चाहते है, ये आनंद का उत्स भगवान कृष्ण होते हैं। उनका सौंदर्य आंखों को आनंद देते हैं, उनका प्रसाद जीवा को आनंद देते हैं, उनका चरण का तुलसी और फूल नासिका को आनंद देते हैं, उनका शरीर का स्पर्श चोक को आनंद देते हैं। कोई आनंद के लिए जीव हस्त में चाहते हैं, जीव चाहते हैं सेंस गार्टिफिकेशन। हमें सेंस गार्टिफिकेशन चाहिए। वो सेंस गार्टिफिकेशन कैसा सेंस गार्टिफिकेशन? जब सेंस को भगवान के साथ युक्त करते हैं वो जो ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, वो जो आनंद मिलेगा वो सही आनंद है। तो वो आनंद कब मिलेगा? जब हमारा अंदर में प्रेम जागेगा। अभी हमारा अंदर में काम खूब जागा है रहा है, हमारा अंदर प्रेम नहीं है। इसीलिए भगवान से जो आनंद आते हैं वो आनंद हम लोग प्राप्त नहीं हो सकता। जब हमारा हृदय में प्रेम जागेगा तो भगवान उनका स्व माधुर्य हम लोग को आस्वादन कराएंगे। तो वो यथार्थ प्रेम है। ऐसा भगवान और भक्त और जीव का बीच में प्रेम और माधुर्य का आदान प्रदान होता है। इससे भगवान को भी आनंद आता है और जीव को भी आनंद आता है। तो इसीलिए बोलता है संबंध अभिधेय और प्रयोजन सिद्धि। हमारा जीवन का क्या प्रयोजन है? तो ये सिद्धि प्रयोजन है। क्या सिद्धि? पंचम पुरुषार्थ होता है। वेद पुराण में चार पुरुषार्थ के बारे में बताया गया, चतुर्वर्ग के बारे में बताया गया। चतुर्वर्ग सबको मालूम है, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। लेकिन भागवत में ये चतुर्वर्ग के बारे में नहीं बताते हैं। धर्म प्रज्ञित कैतवत्र परम निमत्सरण सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सुबदम तापत्र उन्मूलनम। तो धर्म प्रज्ञित, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी को परित्याग किया गया, जो रिजेक्ट किया गया। धर्म अर्थ काम मुख्य, धर्म प्रज्ञित कैतव, ये कैतव है, मुख्य भी कैतव है। तार मध्य मुख्य बनता कैतव प्रधान। धर्म अर्थ काम ये तो कैतव ही है। लेकिन जो लोग मुक्ति के लिए कोशिश करते हैं वो मुक्ति वासना वो कर्तव्य प्रधान होता है। तार मध्य मुक्तिवान सा कर्तव्य प्रधान जहाँ है चाहे कृष्ण भक्ति हो अंतर्ध्यान। मुक्ति के लिए कोशिश करेंगे तो कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान हो जाता है। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन का वो तीन देवता होता है, भगवान का तीन रूप मदन मोहन गोविंदा और गोपीनाथ। मदन मोहन संबंध सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन विग्रह का पूजा करते थे और गोविंद विग्रह का रूप गोस्वामी ने पूजा करते थे और गोपीनाथ मधु पंडित पूजा करते थे। वृंदावन में ये तीन विग्रह प्रकटित हुए थे। इधर कौन कौन आप वृंदावन गए हाथ उठाए? बहुत जन नहीं गए। आप इधर गए हुए तो जमुना का किनारे में उधर मदन मोहन मंदिर है और सब विग्रह तो वृंदावन का बाहर से लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन भेजे थे, उधर जाके सब भगवान का स्थान को डिस्कवर आविष्कार करने के लिए। फिर रूप गोस्वामी को भेजे तो रूप गोस्वामी ने जाके देखे कोई मंदिर नहीं, कोई विग्रह नहीं, कुछ भी वृंदावन में नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सोचने लगे, मैं इधर आ गया अभी क्या करूं? तो मंदिर नहीं, विग्रह नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक दिन रूप गोस्वामी ने वृंदावन परिक्रमा करते थे, एक ग्वाल लड़का आया तो तुम क्यों दुखी हो? तो रूप गोस्वामी का क्या दुख था? नहीं तो भगवान का मूर्ति नहीं, भगवान का मंदिर नहीं, क्या करूं? तो रूप गोस्वामी सोचते है बच्चा क्या पूछता है, ये क्या मेरा दुख क्या समझेगा, वो नहीं बोलते थे। तो ग्वाल लड़का फिर उनको बताया, नहीं मेरे को बताया क्या तुम्हारा दुख का कारण है? तो उन्होंने बताया कि देखो मैं इधर आया हूँ लेकिन कोई भगवान का विग्रह नहीं देखता हूँ। तो बोला देखो वो टीला है, ऊंचा जागा है, उसको गुमा टीला बोलते हैं। मैं देखता हूँ हर रोज एक गाय आते हैं, तो गाय आकर उधर ऐसा दूध गिराते हैं, उधर दूध गिराते हैं, तुम जाकर उसी जगह पर देखो उधर कुछ न कुछ होगा। तो फिर रूप गोस्वामी गांव वाला को बोला के उधर गए तो उधर अंदर में एक सुंदर विग्रह मिला, गोविंद जी विग्रह मिला, गोपीनाथ विग्रह भी ऐसा मिला था। ऐसा जितना विग्रह गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ऐसा वो कोई बनाया नहीं, ऐसा प्रकटित हुए थे। तो उस समय आपको आज मदन मोहन विग्रह के बारे में बताऊंगा, उनका लीला बहुत आश्चर्य लीला मदन मोहन ने किए। तो मदन मोहन विग्रह के बारे में बताते हैं, ये बहुत पुरानी विग्रह है। सत्य युग में जब अम्बरीश महाराज थे, अम्बरीश महाराज के बारे में आप लोग को मालूम है, तो अम्बरीश महाराज ने इस मदन मोहन विग्रह को पूजा करते थे। तो अम्बरीश महाराज भी वृंदावन आए थे, मधुबन में अम्बरीश महाराज उधर द्वादशी व्रत किए थे। तो अम्बरीश महाराज मदन मोहन विग्रह को स्वर्ग का राजा इंद्र को दिए थे। इंद्र भी कुछ दिन इस मदन मोहन विग्रह को पूजा करते थे। तो त्रेता युग में जब रावण स्वर्ग आक्रमण किया तो उसे मदन मोहन विग्रह को तो इंद्र से रावण ले गया था। तो रावण जब रामचंद्र रावण को पराजित किए तो लंका से इस विग्रह को उद्धार करके रामचंद्र लंका से अयोध्या ले गए थे। तो उसी समय रामचंद्र तृतीय युग में जब शासन करते थे तो मथुरा में एक असुर था, उसका नाम था मधु। तो मधु असुर उधर था, तो उनका पुत्र का नाम था लवणासुर। इसलिए आप लोग मथुरा जाएंगे तो उधर का पानी बहुत खारा होता है, क्योंकि लवण सुर था तो बहुत नूना होता है, खारा होता है, लवणासुर का राज्य है। इसलिए तो लवणासुर और मधु दैत्य जिनका नाम पर मधुपुरी, तो बहुत सुंदर मधुपुरी बनाया, इसलिए उसका नाम मथुरा भी बोला जाता है। तो उधर ये असुर ने बहुत मुनि ऋषियों को ऊपर बहुत उत्पात करने शुरू कर दिया, उनको आक्रमण करने शुरू कर, यज्ञ करने नहीं दिया। तो मुनि ऋषि ने फिर अयोध्या जाके रामचंद्र को बोला, आप आके हम लोग को रक्षा कीजिए, तो शत्रुघ्न ने बोला बड़ा भाई राम जी को जो मेरे को थोड़ा मौका दो, आपको जाना नहीं चाहिए, मैं जाके असुर लोग को मैं जाके उन लोग का शासन करूंगा। तो रामचंद्र को कृपा लेके शत्रुघ्न जी ये मधुपुरी आए, तो जंगल में जाकर ढूंढते हैं असुर लोग किधर रहते हैं। तो जाते जाते एक जगह पर देखे एक विराट मनुष्य आ रहा है, एक असुर आ रहा है, उतना बड़ा साइज था, वो जंगल में शिकार करके आता था। तो वो कांत में पीछी पर पीछे को एक बहुत बड़ा टाइगर, एक टाइगर क्या शेर है, शेर के रखा और बहुत बड़ा भैंस है एक पकड़ा और दो मोटा वाला सांप पकड़ा, इसे बहुत लेके जाता था और नाइट डिनर बनाया गया, उसका डिनर खाया गया, तो उसका रूप पैसा होता हुआ था। और ये सब देख के शत्रुघ्न को मालूम हो गया वो वही असुर होगा, तो लवण असुर के साथ बहुत युद्ध किया, युद्ध करके उसको भक्त किया और शत्रुघ्न उनका कैपिटल बनाया, मथुरा का कैपिटल बनाया तृतीय युग में। तो उसी समय रामचंद्र इस विग्रह को मदन मोहन विग्रह को शत्रुघ्न को दिए थे, तैसा वो मदन मोहन विग्रह ब्रज में आया। और द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान आविर्भूत हुए तो कुब्जा ने इस मदन मोहन विग्रह को उनके घर पर रख के पूजा करता था। तो कृष्ण लीला, कृष्ण द्वापर युग में लीला विलास किए, कृष्ण ने वृंदावन में थे, वृंदावन छोड़ के फिर मथुरा चले गए, मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए, ब्रजवासियों ने सब ब्रज में रह गए। तो कृष्ण एक बार फिर मथुरा से ब्रज वापस आए थे, तो जब वापस आए थे तो ब्रजवासी के साथ कृष्ण गोलक वृंदावन चले गए, ब्रज से गोलक वृंदावन चले गए, नंदनंदन कृष्ण चले गए। उसी के बाद सब ब्रज फिर जंगल में भर गया, कोई मनुष्य उधर नहीं जाते थे। तो ऐसा मदन मोहन विग्रह भी खो गया। तो 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए तो पंच तत्व में एक अद्वैत आचार्य होते हैं महाविष्णु सदाशिव का अवतार। तो अद्वैत आचार्य ने वो गए थे वृंदावन, तो सब वृंदावन आप जैसा ऐसा नहीं है, तो पूरा जंगल ही जंगल था। तो वृंदावन में तो अद्वैत आचार्य रहते थे, तो एक दिन अद्वैत आचार्य को सपने में ये मदन मोहन आविर्भूत हुए और सपने में आके बताए उधर एक अद्वैत वट बोलकर पेड़ अभी भी है, आप लोग जाने से देख पाएंगे। तो मैं वट वृक्ष का नीचे में हूँ, मैं अभी तक अपेक्षा किया था कोई कभी मेरा भक्त आएगा मेरे पूजा करने के लिए, अभी तुम इधर आ गए मेरे को उधर से उद्धार करके मेरे को पूजा उपासना करो। तो अद्वैत आचार्य ने सब गांव वाला को बुला के जब वो मिट्टी उधर से खुलने लगे तब इस विग्रह प्राप्त हुए, मदन मोहन विग्रह, ओ सुंदर मदन मोहन विग्रह। तो मदन मोहन विग्रह को वट वृक्ष का नीचे रख के कुटीर बनाए और उधर एक पुजारी रख दिए, तुम पूजा करो मैं जाके भिक्षा करूंगा, तुम इधर पूजा करो। तो पुजारी पूजा करता था, तो मदन मोहन विग्रह का प्रभाव इतना सब जगह पर फैल गया। तो उस समय मुस्लिम राजा वो राजस्व करता था, तो मुस्लिम राजा को गुस्सा आया, तो मुस्लिम राजा कुछ जवान लोग को भेजा। तो उस समय पुजारी नहीं था, अद्वैत आचार्य भी नहीं थे। तो जवान लोग जब मंदिर में घुसे तो वो मदन मोहन विग्रह क्या हुआ न, मदन गोपाल छोटा विग्रह हो गया। तो ये जवान लोग भीतर घुसे तो कुछ देख नहीं पाए, कुछ नहीं उधर, तो चले गए। तो जब पुजारी आया देखा विग्रह नहीं उधर, तो विग्रह नहीं हो तो रोना शुरू कर दिया कि विग्रह किधर चला गया, मैं क्या करूँ, तो पागल का मसीब हो गया। तो मंदिर छोड़ के इधर उधर जमुना किनारे पर घूमते रहते हैं। तो शाम को अद्वैत आचार्य आए, तो अद्वैत आचार्य जब भी विग्रह नहीं उधर, मदन मोहन नहीं, तो क्या हो गया। तो पास में कुछ तो लड़का खेलते थे, वो बोले कि ऐसा जवान लोग आए थे तो लाके वो लोग लेके भाग गए। तो अभी चाचा जी फिर रोने लगे, तो भगवान कृष्ण कृपा करके आए थे, हम लोग कुछ अपराध हो गया इसलिए भगवान ने चले गए थे। तो बहुत रोते रोते अद्वे चाचा जी थोड़ा सो गए, तो मदन मोहन आविर्भूत हुए, प्रकट हुए स्वप्न में। मैं नहीं गया हूँ, मैं उधर हूँ, जवान लोग मेरे को लेने के लिए आए थे, मैं छोटा गोपाल बन के तो पुल का अंदर में छुप के रहा हूँ, तो तुम जाओ मेरे को देखो उधर है। तो ऐसा बात सुनने से दूसरा कम्युनिटी का लोग को बोले ये कैसा भगवान है, तो तुम भगवान सर्वशक्तिमान हो, तो जवान लोग आए गए तो तुम डर के पुल का अंदर घुस गए, छुप गए, ये कैसा भगवान है। तो ऐसा बोलते है, जब मैं बांग्लादेश प्रचार करने के लिए जाता हूँ तो मुस्लिम लोग ज्यादा है, तो उधर हमारा हिंदू लोग को लोग बोलते हैं कि तुम्हारा तुम लोग ये मूर्ति को पूजा करते हो भगवान करके, ये क्या भगवान है, है? ये मूर्ति भगवान है, ये मूर्ति का ऊपर एक मच्छर बैठता है, एक पाखी का कुछ कीड़ा बैठता है, तो उसको भगा नहीं सकता है, वो तो कैसा भगवान है, भगवान सर्वशक्तिमान होना चाहिए, कैसा बोलते हैं लोग। देखिए ये भगवान और भक्त का बीच में एक लीला होता है, भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन मेरा भक्त मेरे को पालन करेगा। इसीलिए जो बात मैं कल बताता था, तो भगवान चाहते हैं मेरा भक्त मेरे को सुरक्षा करेगा, इसीलिए कभी कभी ऐसा लीला भगवान ने करते हैं। भक्त को आनंद देने के लिए तो एक मामूली आदमी है, किसी शक्ति नहीं है ऐसा है। तो जब अद्वैत आचार्य ने मंदिर खुल के गए तो देखे फूल के नीचे गोपाल रूप में मदन गोपाल बैठे हुए थे, तब फिर साथ साथ खाना पीना बनाए, मदन गोपाल को भोग चढ़ाए, के जमुना नदी पर गए, तो देखो पुजारी है उधर घूमते रहते, तो पुजारी को बोला तुम इधर क्या करते हो, मंदिर में जाओ उधर भगवान को सेवा करो। तो भगवान का सेवा क्या करो, भगवान तो चले गए, नहीं भगवान नहीं गए, वो फूल का नीचे छुपते रहे थे, मैं जाकर उद्धार किया, तुम जाओ भगवान को पूजा करो। तो ऐसा फिर पुजारी को उनको मदन मोहन ने मदन गोपाल करके पूजा करना, उनका नाम मदन मोहन था तो मदन गोपाल हो गया। तो मदन गोपाल को वो पूजा करते थे। एक दिन मदन मोहन अद्वैत आचार्य को बताए, देखो तुम मेरा बहुत सेवा किया, तो अभी मैं दूसरा भक्त सेवा लेने के लिए चाहता हूँ। तो मथुरा में एक माता जी है चौबे, चौबे करके माता जी है, तो उनका घर से मैं सेवा लेने के लिए चाहता हूँ, तो मेरे को उधर लेके तुम रख दो। तो अद्वैत आचार्य, आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूँ। तो मदन मोहन, तुम्हारे पास में तो हर समय तुम तो मेरा एक्सपेंशन हो, तो तुमको क्या चिंता है। तो अद्वैत आचार्य ने चौबे परिवार में माता जी को मदन मोहन विग्रह देके चले गए। तो मदन मोहन विग्रह को लेके चौबे माता जी सेवा पूजा करते थे, तो ब्रजवासियों ने कृष्ण को तो उनका परिवार का लड़का जैसा ऐसा पूजा करते हैं, ऐसा ही देखते रहते हैं, तो ऐसा राधा लोग भक्त उनका पूजा अर्चना करते। फिर बाद में सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी, उनके बाद सनातन गोस्वामी भी आए। तो सनातन गोस्वामी तो तब तो वृंदावन जंगल था, उधर के लोग नहीं रहते थे, तो वृंदावन में भजन करते थे और हर रोज मथुरा जाते थे भिक्षा करने के लिए। सनातन गोस्वामी वृंदावन से गोवर्धन जाते थे, गोवर्धन 21 किलोमीटर परिक्रमा करते थे, फिर मथुरा का भिक्षा करते थे, माधुरी करके फिर वृंदावन में आके भजन करते थे। तो एक दिन भिक्षा करने के लिए गए, तो देखे उन्होंने देखे दो लड़का वो खेला करते हैं, तो दो लड़का खेला करते हैं, तो एक लड़का वो चूबे का पुत्र था, तो चूबे का पुत्र और एक लड़का का तो खेलते हैं, तो चूबे का पुत्र और जो खेला करते थे चूबे का पुत्र हार गया, तो दूसरा लड़का उनका ऊपर चढ़ा, तो तुम मेरे को भी तो उठा के लो, तुम हार गए, तो वो क्या था, वो तो हार गया उसको उठा के लिया। तो जब फिर खेलने लगे और सनातन गोस्वामी देखते रहते हैं, तो वो लड़का हार गया। तो चंद्रकर लड़का बोला मेरे को भी उठा के तुम लेके जाओ। तो वो बोला मैं तुमको नहीं उठाऊंगा, बल्कि दौड़ के भाग गया। तो भाग गया वो मंदिर में घुस गया, हम मंदिर में घुस गया। तो चंद्रकर लड़का बोलता है उसको, है तुम आज भाग गए, कल आएंगे तुमको दिखाऊंगा मैं। तो सनातन कृष्ण का भाग हो गया, क्या है कौन लड़का है? फिर न वो लड़का वो मंदिर में दौड़ता है मंदिर में, तो दूसरा लड़का तो मंदिर में घुस गया था इसको पकड़ने के लिए। जब मंदिर में जा गया इस चंद्र का लड़का, तो पूजा ही भागा गए, फिर भागो क्या मंदिर में तो घुसते हो, पूजा तो कुछ मालूम नहीं क्या होता है। तो वो लड़का जो खरीदा था वो जाकर मदन मोहन में शिवलिंग हो गया उस विग्रह में। और हर रोज मदन मोहन आके इस चूहे का लड़के के साथ खेला करते थे। तो सनातन गोस्वामी एक दिन गए थे भिक्षा करने के लिए इस चूहे का घर पर, तो उन्होंने देखा उस चूहे का जो माता जी वो नहाया नहीं, हाथ मुख भी धोया नहीं, वो खिचड़ी बनाता है तो मदन मोहन को भोग लगाने के लिए। तो खिचड़ी कैसे बनाता है? तो इंडिया में तो ट्विच व्यवहार करते है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्विच दांतुन, तो दांतुन व्यवहार करते हैं। वो दांत मांगते हैं यार, अरे आरे साइड देके वो खिचड़ी को स्टीयरिंग करते हैं, क्या करते हैं उसको मदन मोहन को भोग चलाएंगे। तो सनातन कृष्ण जी लगती है माता जी क्या करते हैं, भगवान को भोग चलाएगा, नहाया नहीं, मुखा धोया नहीं, तो तो सनातन गोस्वामी माता जी को बनाए बताए, देखो माता जी ये भगवान है, और तुम ऐसा करते तुम थोड़ा नहाना चाहिए, नहा के पवित्र शुद्ध रहते अच्छा भगवान के लिए भोग पकाना चाहिए। तो ब्रजवासी खूब सरल था, बोला हाँ सनातन गोस्वामी को लोग खूब मानते थे, बड़ो बाबा करके मानते थे। तो बोला मैं काल से ऐसा करूँगी, काल से मैं नहाने के बाद फिर मैं भोग लगाऊंगी पकाऊंगी। तो नेक्स्ट डे फिर सनातन गोस्वामी आए, तो सनातन गोस्वामी आए तब तक वो पकाया नहीं और बहुत टाइम देरी हो गया। और जो लड़का रोते हैं कि उनको बहुत भूख लग गया खाना क्यों नहीं, तो तुम्हें मदद बोलता है मैं नहाया नहीं तो कैसे बनाऊंगी, तुम्हारे लिए नहाना पड़ेगा, नहाने के बाद हमने कुछ आए एक हाथ धोते हैं। तो सनातन गोस्वामी बहुत चिंतित हो गए, मैं क्या कर दिया, इसका प्रेम तो दूसरा तरीके का प्रेम था, वो तो वैदिक भक्ति का प्रेम नहीं था। तो अभी मैं बोल गया तुम नहाने के बाद इस खाना बनाएगा, अभी तो मदन मोहन आ गया, अभी तो भूख लग गया, भगवान को खाना नहीं मिलता है। तभी सनातन गोस्वामी ने बताया माता जी तुमको और एक विधि विधान माननी नहीं चाहिए, तुम जैसा करते थे वैसा करके मदन मोहन को तुम सेवा करो। तो भगवान उनका भक्त का भगवान को पूजा करने का आराधना करने का कोई विधि और विधान नहीं होता है। भक्त भक्ति जैसा तरीका भक्ति से भगवान को उपासना करता है भगवान उसी को ही ग्रहण करते हैं। भक्त का भगवान ऐसा ही होता है। मेरा याद आता है एक लीला के बारे में। तो एक जमींदार था, वो जमींदार को घर में एक रोज जटा के लोग घुस गए, सब चोरी करके ले गए, धन संपत्ति चोरी करके ले गए। और उनका ठाकुर घर में सालग्राम शिला था, तो सालग्राम शिला भी चोरी हो गया। तो डकैत लोग सालग्राम शिला देके क्या करेंगे, तो डकैत क्या किया ना, एक जो चमार जो जूता सिलाई करते हैं क्या बोलते हैं उसको, चमार के पास गया, बोला पत्थर में क्या करूं तुम कुछ काम में लाएगा? तो चमार बोला हाँ हमारे काम में लाएगा, मैं जूता सिलाई करता हूँ ना, तो कांटा है नेल इसको जूता रिपेयरिंग के लिए ये पत्थर का व्यवहार करूंगा, बहुत अच्छा होगा। तो उससे लिया, वो ओडिशा में उसी समय ऐसा था गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध था। तो गीत गोविंद गाना उड़ीसा घर घर में गांव गांव में लोग में बोलते थे, बाथरूम संग जैसा गुनगुन करके बोलना है ऐसे बोलते थे। तो ये चमार था वो गीत गोविंद गान एक लाइन उसको मालूम था, तो एक लाइन वो बोलता था और वो पत्थर को सालिग्राम सिला जूता सिलाई करता था। तो एक दिन एक ब्राह्मण उसी रास्ते पर जाता था, तो ब्राह्मण ने देखा वो सालिग्राम सिला जूता सिलाई करता है, तो साथ साथ जा रहे तुम उतना दुर्भागा हो, शालिग्राम शिला लेके जूता सिलाई करते हो तो मेरे को एक पत्थर दे दो। तो वो बोला मेरे को एक पत्थर क्या जरूरत है, तुम ले सकते हो लेकिन कुछ पैसा देने पड़ेगा। तो 1-2 रुपया देके वो शालिग्राम शिला लेके चला गया ब्राह्मण। तो जाके वो घर पर बहुत दूध डाला और बहुत कुछ देखा, बहुत बड़ा अभिषेक किया। तो अभी 1 रोज हो गया, 2 रोज हो गया, 3 रोज, 4 रोज हो गया। फिर भगवान उसके सपने में आए और बोले तुम मेरा बहुत सेवा किया लेकिन तुम्हारा सेवा में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तुम मेरे को उस चमर का पत्थर लेके दिया देखा। तो ब्राह्मण बोला क्या, मैं इतना सेवा करता हूँ, इतना अच्छा से अभिषेक करता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है? और चमर का पत्थर जूता सिलाई करता हूँ वो अच्छा लगता है? तो भगवान बोले वो चमर शुद्ध भाव में जो गीत गोविंद गाते है ना, वो गीत गोविंद से मेरे को इतना आनंद आता है, तुम्हारा इतना दूध तुम मेरे ऊपर डालते हो उसमें मेरे को आनंद नहीं आता है, मेरे को गीत गोविंद सुनना चाहिए। भगवान का गीत गोविंद गान इतना आनंद आता है। मेरे जगन्नाथपुरी में एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ को रात को जगन्नाथ को ड्रेस पहनाया, पुजारी पांडा लोग ड्रेस पहना गए, दरवाजा बंद करके चले गए। तो नेक्स्ट डे सुबह मंगला आरती के पहले जब दरवाजा खोले, देखे जगन्नाथ का सब कपड़ा टूट गया, हाँ तो छिड़ा है और कपड़े में बहुत गंदा लगा है। तो पुजारी लोग आश्चर्य हो गए, क्या हो गया जगन्नाथ को, कौन रात को अंदर घुसा था, ऐसा कर गया तो बर्बाद हो गया। फिर जगन्नाथ सपने में पूरी राधा को बताया, नहीं कोई मंदिर में घुसा नहीं, मैं मंदिर से बाहर चला गया था। क्या हुआ था, उस दिन रात को एक औरत एक लड़की बैंगन का बगीचा में वो बैंगन तोड़ता था और बैंगन तोड़ता था और गीत गोविंद उगाता था। तो गीत गोविंद गान से उनके जगन्नाथ को इतना अट्रैक्शन हो गया, वो जगन्नाथ मंदिर रत्न सिंहासन को छोड़ के भागने लगे। तो सब वो लड़की गाना गाते हैं, गीत गोविंद गाना गाते हैं, जगन्नाथ पीछे पीछे जाते हैं। तो जब पीछे पीछे जाते हैं सारा रात गान सुनते हैं। तो सुबह जब सूरज उदय होने लगे तो जगन्नाथ को मालूम हो गया, तो सुबह हो गया मेरे को तो मंदिर जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ ने छूटने लगे, जोर से जब छूटने लगे तो बगीचा में जो बैंगन का पेड़ होता है तो कांटा होता है ना, तो कांटा लगा और सब कपड़ा क्या हुआ फट गया, तो कपड़ा फट गया। तो जगन्नाथ को इतना प्यार है गीत गोविंद सुनने के लिए, इसीलिए उसी दिन से पूरी का राजा ठीक कर दे वो जगन्नाथ भाग जाता है कभी कभी। इसीलिए हर रोज जगन्नाथ सोने से पहले वो गीत गोविंद सुनाते रहते हैं, तो जगन्नाथ कभी नहीं भागेंगे। तो बोलने का मतलब है ये भगवान ऐसा होता है, भगवान वो भक्त का भाव का ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन होते हैं। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी ने बताए कि तुम जैसा सुविधा वैसा ही पूजा करो, लेकिन ये मदन मोहन विग्रह को दर्शन करके सनातन गोस्वामी खूब लोभ हो गया, ओ इतना सुंदर विग्रह, मैं इस विग्रह को प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं पूजा उपासना कर सकता हूँ, ऐसा सोच के सनातन गोस्वामी चले गए। तो एक दिन रात को सनातन गोस्वामी और सुबह माता दोनों को सपने में आके मदन गोपाल जी बताए, सनातन तुम जाओ कल सुबह जाके मेरा मूर्ति ले, मैं तुम्हारा हाथ से सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी खूब खुश हो गए। तो सनातन गोस्वामी सोचे तो मैं तो जाऊंगा लेकिन वो माता जी मेरे को वो विग्रह देंगे थोड़ी, फिर सोच के फिर सुबह गए। जब गए उसी रात को और सुबह माता जी को भी मदन को मोहन ने बताया, ये माता जी तुमसे मैं बहुत सेवा लिया, अभी मेरा भक्त आ गया मैं उनसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट डे सुबह जब सनातन गोस्वामी गए सुबह माता जी के पास, माता जी मदन मोहन मेरा सपने में आए थे, मेरे को बताए तुम्हारे पास आने के लिए और विग्रह लेने के लिए। तो सुबह माता जी बहुत घुसा किए, घुसा करके बोलते अभी अभी उसको इधर से लेकर भागो इधर से, वो मेरे पास रहना नहीं चाहिए, ये अभिमान करके बोलते हैं। वो एक बंगाल में टिया पक्षी बोलते है, टिया पक्षी हिंदी में क्या मालूम नहीं, एक चिड़िया होता है तोता होता है, क्योंकि वो बड़ा तोता है, तोता पक्षी देखा है, ये तोता जंगल में रहने वाला है, माँ दशोदा कितना प्यार करके उसको बढ़ाया था तब उधर से भाग गया और मेरा पास फिर जाएगा,
वो जंगल में रह रहा है, उसको लेकर इधर से भागा इधर से
खूब जोर से झांकता और बोला ऐसे भागो इसके लेकर ये तोता को मेरे घर नहीं चाहिए। तो वो तो खूब गुस्सा करता है, गुस्सा करके बोलता है इसको लेकर भागो। ये सनातन गोस्वामी को खूब आनंद आता है, तो बहुत आता है। तो सनातन गोस्वामी तो मदन मोहन कैसा ले जाएंगे, तो सनातन गोस्वामी तो चाहते तो मदन मोहन बोला मैं जाऊंगा तुम्हारे पास पूजा लूंगा। तो सनातन तुमको मैं कैसे ले आऊंगा, तुम मेरे पास पैदल में जाना पड़ेगा। तभी सनातन गोस्वामी उनके साथ पैदल में वृंदावन तक गए। तो सनातन गोस्वामी चले गए तो सुबह माता जी साथ साथ उधर मूर्छा होके भी पड़े। जब मदन मोहन छोड़ के मेरे को चले गए तो मदन मोहन जाके उधर एक सूर्य किला है, द्वादश आदित्य किला। भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग को शांत किए, शांत करने के बाद तो उधर द्वादश सूरज भगवान श्री कृष्ण को ताप दिए थे, तो ठंडी हो गया था शरीर। उस द्वादश आदित्य किला पर उधर मदन मोहन को रख के तो सनातन गोस्वामी उनका सेवा करते थे। वो क्या सेवा करेंगे, उतना ऐश्वर्य नहीं था तो मदन मोहन को क्या भोग चढ़ाएंगे। वो तो माधुरी करते थे, सूखा रोटी मिलता था वो देते थे, ताना रोटी ऐसा खा मदन मोहन को भोग लगाते थे। तो एक दिन मदन मोहन आविर्भूत होके सनातन गोस्वामी को बताए, सनातन तुम मेरे को सूखा रोटी खिलाते हो तो थोड़ा नमक दो, नमक देकर कैसा मैं खाऊंगा, नमक नहीं रोटी खिला कैसा खिलाता है तुम। तो देखो भगवान किससे आनंद उठाते हैं। जो भगवान लक्ष्मीपति है क्या अभाव है, सब कुछ प्राप्त है, उधर से उनका आनंद नहीं होता है। ये भक्त का हाथ से नमक बगैर सूखा रोटी खाते हैं और भक्त का सामने हाथ दिखाते हैं मेरे को थोड़ा नमक खिलाओ, इससे आनंद आता है। ये अभक्त तो लोग इसका तात्पर्य नहीं समझ पाएंगे। ये लक्ष्मीपति होने से भी भक्त का हाथ से नमक चाहने से जो आनंद है, तो आनंद लक्ष्मीपति होने से सब कुछ पाने से भगवान को आनंद नहीं आता है। और जब भगवान भक्त के पास भिक्षा करते हैं तुम मेरे को सूखा रोटी खिलाते हो थोड़ा नमक दो, तब भक्त का क्या उत्तर होता है, भक्त भगवान को बोलते हैं हाँ क्या तुम आज नमक चाहते हो, काल से शक्कर चाहिए भिक्षा खीर चाहिए, मैं बाबा जी लोग ये तुम किधर से ले आऊंगा तुम्हारे लिए, मैं भजन करूंगा और तुमको खीर खिलाऊंगा। ये भक्त जैसा भगवान जैसा भक्त भी वैसा है। भक्त भगवान वो भक्त के पास चाहता है और भक्त आनंद अगर कहो भक्त भगवान चाहता है किधर लगे मैं शक्कर ले आऊंगा। ये भक्त वैसा उन्नत है, वो भगवान को डांटते है तुम आज नमक चाहिए शक्कर चाहिए, भगवान यही तो मैं नहीं उठता हूँ, तुम इधर रहते रहते इतने भागो, तुम नमक चाहते तुम नमक की व्यवस्था करो, मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। ये एक टाइप का भक्ति होता है, उसमें तो फल भक्ति, हम लोग इस भक्ति को फॉलो नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी को हम लोग जो स्तर है उस स्तर में सब कुछ आशा चीज देना चाहिए, नहीं सनातन गोस्वामी ठीक है जो कुछ खिलाओ इतना नहीं भाग लेंगे। तो सनातन गोस्वामी उसी स्तर में थे, उन्होंने बताया तुम तो नमक ले, तुम नमक ले आओ। तो मदन मोहन बेचारे क्या करेंगे, नमक तो मिलते नहीं, सनातन गोस्वामी बता दिया तुम नमक का व्यवस्था करो। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रभु भगवान है, उनको क्या अभाव है। तो उसी दिन रात को क्या हुआ, ना जमुना नदी में एक बहुत बड़ा सौदागर जो व्यवसायी होता है बिजनेसमैन, वो बहुत सामान भर के वो मथुरा ले जाता था, बहुत नमक था, बहुत नमक बुझाई करके मथुरा ले जाता था। तो क्या हुआ, ऐसा कुछ हो गया, वो जहाज उस किला में किधर लग गया, वो जहाज चलते नहीं, बहुत कोशिश किया जहाज चलते नहीं। तो कुछ लोगों ने बताया उधर सिद्ध बाबा है, तो पहाड़ के ऊपर सिद्ध बाबा को मिलो, वो कुछ कृपा करेंगे तो तुम्हारा नौका मुक्त हो जाएगा। तो बिजनेसमैन ऊपर गया सिद्ध बाबा को बोला कुछ कृपा करो, मतलब मैं क्या कृपा करूँ, अंदर बैठा है उसके पास जाओ। तो जब और नौका का मालिक उधर गया तो जो नौका से आया था वो कुछ मोहर गोल्डन मोहर लिया, दक्षिणा का मंदिर जाता है ना, कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, तो कुछ मोहन लाया था तो भगवान मदन मोहन के पास प्रार्थना किया, जो डोनेशन देने के लिए किया पॉकेट में हाथ घुस गया तो नमक का पैकेट निकला तो नमक का पैकेट आ गया तो मदन मोहन को नमक का पैकेट दे दिया तो मदन मोहन सारा तरीके से बोलते नमक आ गया बहुत अवस्था है। तो मदन मोहन के पास प्रार्थना किया तो मेरे को आप कृपा कीजिए मेरा नौका मुक्त हो जाएगा तो इसी तरह बिजनेस में जितना मेरा फायदा होगा ये सब जगह तुम्हारा मंदिर तुम्हारा नित्य सेवा का व्यवस्था कर दूंगा। तो फिर जहाज लेके मथुरा और आगरा गया तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए उसका डबल प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो लोग लालच नहीं हुआ, वो मन खुल के सब बहुत बड़ा मंदिर बना दिया और मदन मोहन का सब कुछ सेवा का व्यवस्था उसे कर दिया। ऐसा भगवान कैसा मूर्ति रूप में आविर्भूत होकर वो भक्त के साथ लीला विलास करते हैं तो अभक्त लोग को समझ नहीं आते हैं। तो ये भगवान का लीला है। भगवान कृष्ण ऐसे ब्रज में आविर्भूत है कि बहुत सारी लीला की है तो उनका जितना लीला है सब लीला से गोपियों के साथ उनका लीला बहुत चमत्कार था, गोपी लोग के साथ लीला बहुत चमत्कार था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण न राधा रानी और राधा रानी उनका सहचर्यों के साथ खेलती थी तो उसी समय मैं क्या हुआ न दुर्वासा मुनि आ गए। तो दुर्वासा मुनि को देख के सब गोपियों ने भाग गए तो राधा रानी भागे नहीं। तो दुर्वासा मुनि आए, राधा रानी गुरुजनों को सम्मान करने से बहुत श्रेष्ठ था, सब गुरुजन को सम्मान करते थे। तो दुर्वासा मुनि को प्रणाम की, दुर्वासा मुनि संतुष्ट हो गए तो उनका बार दिए कि तुम जो कुछ पकाएंगे तो तुम्हारा हाथ में जो खाना खाएंगे तो सुस्त रहेंगे और दीर्घजीव हो जाएंगे, बहुत आयु बढ़ जाएगा। तो इसीलिए माँ जसोदा क्या करते थे ना कभी कभी राधा रानी को बुलाते थे। राधा रानी का शादी हो गया तो जावत में उधर जटिला कुटेला है, जटिला तो खूब फेमस है ना इंडिया में सब जानते हैं। जटिला कौन था? राधा रानी का सास था और ननन था कुटिला। तो माँ जसोदा ने बताया तुम राधा रानी को भेजो, तेरा कन्हैया के लिए कुछ पकाएंगे। तो जटिला नहीं चाहते थे तब भी भेजा क्योंकि नंदा रानी बोलते हैं कैसा मैं नहीं भेजूंगी तो भेजते थे। तो कृष्ण राधा रानी के हाथ से खाना खा के खूब संतुष्ट होते थे। तो ऐसा हुआ जटिला ने और भेजना नहीं चाहना लेकिन मत जाओ कृष्ण बहुत दुष्ट है, एक दूसरे के पास तुम मत जाओ उधर। तो ऐसा बोला तो तब राधा रानी को जाने नहीं दिया। तो राधा रानी तो बहुत दुखी हो गई, मैं अभी कृष्ण का दर्शन कर नहीं पाता हूँ, कृष्ण के लिए खाना भी बना नहीं सकता हूँ, तो अभी मैं क्या करूँगी। तो एक गोपी ने बताया तुम एक काम करो, तुम एक नाटक करो। नाटक? क्या नाटक? तो नाटक करो कि तुमका सर्प दंशन किया। तो राधा रानी तो प्रस्तुत है जो कुछ नाटक करने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए जो कुछ करना वो रेडी है। तो एक दिन ऐसा चित्कार करने लगो सांप दंश दिया, कहा सांप दंश दिया, कहते तो मूर्छा के उधर गिर गए। तो जटिला कुटिला ने खूब व्यस्त हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, मेरा बुद्धू को क्या हो गया। तो सांप दंश दिया तो छूटने लगे इधर उधर, कोई आएगा इसको ठीक कर देगा। इस समय में एक गोपी ने एक ब्राह्मणी को लेकर आया, कुटिला को बताया, जटिला को बताया देखो ये मथुरा का एक ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी लड़की है, इसको बहुत मंत्र तंत्र मालूम है, ये ब्राह्मणी बहुत एक्सपर्ट है, कैसा तुम्हारा वो जो बहू को बहू सब बहू को जो सब दस दिया वो सब जितना बीस है सब बीस निकल गया है, ये ब्राह्मणी है। तो ऐसा किसान नहीं जाता है घर छोड़ के, सिर्फ तुम्हारा काम के लिए इसको ले आया। तो ब्राह्मणी तो जटिला खूब खुश हो गई, वो खूब बहुत अच्छा बात है। तो ब्राह्मण ने बताया तो मेरे को चेक करना पड़ेगा तुम्हारा बहू को, तो उनका बीच उनका शरीर कितना दूर उठा मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है तुम जाओ। तो गोपी को लेके वो ब्राह्मण अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, राधा रानी मूर्छा के अंदर में गिरे पड़े थे उधर। तो तो बाहर जोशीला कुटीला वो काम देते हैं, क्या करते हैं ये ब्राह्मण का काम धर्म है। तो ब्राह्मण का कुछ मंत्र पाठ किया, अब मंत्र पाठ करके तो ब्राह्मण बोलते हैं, ओ नागराज तुम क्यों ये लड़की को काम दस दिया। तो फिर उस ब्राह्मण उस नागराज का सूर करके बोलते मैं उसको दस करने मैं, वो बोला तुम कौन हो, तुम किधर से आया हो। तो बोला मैं नागलोक से आया हूँ। तो ब्राह्मण ही इसका गला करके बोलते हैं मैं नागलोक से आया हूँ, तो मैं सबको दसूंगा दर्शन करूंगा। मैं क्यों तुम इतना गुस्सा करता हो, मैं जतिला क्यों राधा रानी को कथा दिया माँ दशोदा को कृष्ण के लिए पकाने के लिए जाने के लिए क्यों नहीं जाने देता है। वो नहीं जाने देगा, आज का उनका बहुत दर्द दिया कल उसको भी दर्द दूंगा। तो ब्राह्मण ऐसा सुन करके बोलते हैं, तो बाहर मेरी सुख सुनते हैं। तो ब्राह्मण जब अंदर घुसा तो गोपी को बोला तो राधा रानी को मेरे को चेक करना पड़ेगा, जो दर्शा जो बीस तो बीस कितने दिन उठा मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण ने राधा रानी को पाप पकड़ा और चेक करते हैं, और जब हमें पाप पकड़ा तो राधा रानी शी नोज द बेस्ट स्टार्ट ऑफ कृष्ण, कृष्ण का स्पर्श का क्या सुख मालूम है। तो साथ साथ उन्हें ध्यान हो गया वो ब्राह्मण कौन है, वो कृष्ण थे। तो कृष्ण का स्पर्श पर गए राधा को साथ साथ मुझे मूर्छा हो गया तो ध्यान आ गया। तो जब कृष्ण ऐसे नाटक करते हैं अंदर में घुस के, तो बोलते हैं जब बोला तो जटिला कुटिला ये बहू को कृष्ण का पाकाने के लिए छोड़ेंगे तो मैं सब भी हरण करके ले जाऊंगा। तो जटिला साथ साथ दरवाजा खोल के अंदर घुस गया, हाँ मैं छोड़ूंगा छोड़ेगी हर जगह जाएगा पकाने के लिए। तो ठीक है, तब तब देखा राधा ने भी ज्ञान आ गया, वापसा हो गया। सब जटिला ने पूरा विश्वास आ गया, ओ ये ब्राह्मण का अच्छा मंत्र मालूम है, तो उसके बारे में ब्राह्मण कौन है। तब फिर गोपी को बोलते हैं, ओ तुम इतना पावरफुल क्या बोलते हैं जो लोग मंत्र करके झाड़ते हैं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बांग्ला में ओझा बोलते हैं, ओझा तो इतना अच्छा ओझा ले आए। तो गोपी को बोला देखो तो अभी तो मेरा बहू का विष दूर हो गया, तो नागराज में तो बहुत गुस्सा के फिर वापस आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें ब्राह्मण के बोलो मेरा बहू का बहुत रहेगा आज रात इधर रहेगा, रहकर फिर काल जाएंगे बहुत डर लगते हैं। तो गोपी ने बोला हाँ मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। तो सारा रात कृष्ण राधा रानी के साथ उधर है। तो फिर ऐसा होता था कृष्ण ऐसा आके बहुत चिल्ला करते थे, राधा रानी हर रोज जाता था कृष्ण का घर पर खाना बनाने के लिए। तो माँ दशोदा ने इतना खुशी हो गई थी, माँ दशोदा ने सोचते थे ये राधा रानी को मेरे को बहू करके प्राप्त होना चाहिए, मेरा कहना है तो राधा रानी के साथ शादी खड़ा हूँ। तो छोटे राधा रानी से तो एक दिन उधर क्या ना शादी का पहले हाथ में हल्दी का पाउडर लगाते हैं। तो एक दिन माँ दशोदा ने क्या किए, राधा रानी जो पकाने के लिए गए थे बहुत खुश हो गए, तो हल्दी का पाउडर लगा दिया हाथ में। तो हल्दी का पाउडर लगा देना, एक दिन क्या हुआ राधा रानी हर रोज जाते हैं पकाने के लिए, तो माँ दशोदा खूब खुश हो गए थे। तो उनका पति जो अभिमन्यु को बताए तुम आओ मेरा घर पर, मैं तुम्हारा पत्नी आता है मेरा कन्हैया के लिए खाना बनाने के लिए, मैं राधा रानी के लिए कुछ विशेष अलंकार उसको उपहार देने चाहता हूँ। तो अभिमन्यु को बुलाए थे माँ दशोदा। तो उसी दिन सुबह क्या करता एक बहुत बड़ा बक्स लेते माँ दशोदा बहुत मूल्यवान अलंकार से भरते उधर भरते थे। कृष्ण ने देखा ए माया तुम क्या करते हो, मेरा अलंकार किसको दे देते हो, तो घर का अलंकार तो मेरे लिए। तो माँ दशोदा बताया मैंने मेरे राधा रानी के लिए भेजता हूँ। तो माँ दशोदा सब अलंकार भर के उसके ताला लगा दिए। कृष्ण ने देखा सब अलंकार भरा है, तो माँ दशोदा काम करने के लिए चले गए और सो गोवाल बालक को बुला के वो ताला तोड़ दिए, फिर सब अलंकार निकाल दिए। मगर कृष्ण ने उधर घुस गए और ग्वाल लोग उनको लॉक कर दिए, कृष्ण अंदर बैठा है। तो माँ दशोदा अभिमन्यु के पास समझ भेजा तुम्हारा लिए बहुत अच्छा अलंकार है, है? राधा के लिए भेजता तुम आओ। माधवता जैसे कुछ मालूम नहीं, सब अभिमन्यु आया तो माधवता ने बता अभिमन्यु इसमें मेरा राधा राधा के लिए मैं बहुत अलंकार रखा हूँ, ये राधा का बगैर किसी को नहीं देना, सिर्फ राधा को ही देना चाहिए। तो अभिमन्यु खुद खुश हो गया। तो वाक्य उनका बहुत भारी है, उसका बहुत बहुत अलंकार है। तो भारी वाक्य ऊपर उठाया, ऊपर उठाई दिया जबत गया। तो जटलब ये क्या लाया तुम? नहीं, ये माँ दशरथा ने खुश हो गए, राधा रानी के लिए बहुत अलंकार भेजे, इसने बहुत धन संपत्ति भेजे हुए है। तो जाके अभिमन्यु तो उधर अलंकार वक्त रख दिए, रखा राधा रानी को बताया, माँ दशरथा ने खुश हो गए, तुम्हारा पर बहुत अलंकार दिए, तुम इसको पलना चाहिए। तो रात के जब चला गया तो राधा ने जब वक्त खोला तो इसका अंदर चीज को लेकर लगाए। तो कृष्ण ही सबसे अच्छा अलंकार है राधा रानी के लिए, उनका वक्त में पढ़ने के लिए, और कृष्ण का आदर किया है। ऐसा कृष्ण बहुत सारी लीला करते थे। एक लीला बोलने आता है, कृष्ण जब छोटा थे, राधा रानी भी छोटी थी, तो जब शादी नहीं हुआ तो माँ दशरथा ने क्या किए, न राधा रानी को बहु करके प्राप्त करने का अभिलाष में अभिलाष हुआ था, तो राधा रानी का माँ दशरथा ने राधा रानी के हाथ में हल्दी का पाउडर लगा दी। तो राधा रानी हल्दी पाउडर लगा के जो बरसने गई तो उनको बहुत लज्जा, क्या शर्म आया। तो अभी गांव का लोग देखेंगे मेरे हाथ में हल्दी का पाउडर है, ये कैसे लगेगा। तो राधा रानी जाके तालाब था और तालाब में हाथ धो लिए तो तालाब का पूरा पानी पीला कलर हो गया। अभी आप लोग जाएंगे तो उसको पिल्ली पोखर बोलते हैं, पिल्ली पोखर, पिल्ली तालाब। वो तालाब अभी भी, उसका पानी अभी भी पीला कलर है। तैसा जब वृषभान राजा किसी का सुनेंगे जब माँ दशरथा राधा रानी के हाथ में ऐसा हल्दी का पाउडर लगा दिए और माँ दशरथा चाहते हैं कैसा कृष्ण राधा रानी को शादी करेंगे, तो वृषभान राजा कृष्ण तो बहुत खुश हो गए। तो संबंध हो गया ना, संबंध होने से तो लड़की का घर से कुछ उपहार भेजना चाहिए। तो बहुत खूब दामी, बहुत एक्सपेंसिव, हाँ, मोती हीरे का तो माला एक वक्त में करके तो नंद महाराज के पास भेज दिए कि तुम्हारा कहना ही था मेरा राधा का शादी हो गया। तो जब माँ दशरथा और नंद महाराज ने देखे तो आश्चर्य हो गए, तो बहुत खुश हो गए और दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए ना, इतना जे रत्न मोती तो भेजे तो हमारा घर में तो इतना नहीं, और लोग का नियम है लड़की जितना भेजेंगे लड़का को उससे ज्यादा भेजना चाहिए, तो मेरा घर में कुछ नहीं। तो नंद बाबा और दशरथा माई बहुत दुखी हो गई, वो काम करते थे। तो कन्हैया कृष्ण को मालूम हुआ, माँ बाबा को खूब दुखी हुई। तो माँ बाबा को पूछे क्या हुआ, ना ऐसा वृषभान राजा ने भेजे, हमारा घर में तो कुछ नहीं, कैसे मैं भेजूंगे। तो कृष्ण क्या, तो माँ तो बोल के चला गए। तो कृष्ण क्या कि इसका मोती जो था, मोती स्वर्ण, तो लेके जमीन में लगा दिए उसका। तो माँ दशरथा जब आए देखे वो सब नहीं, मोती हीरे कुछ नहीं, क्या हो गया। तो कृष्ण ने बताया मैं सब जमीन में लगा दिया, तो पेड़ होगा उसमें बहुत मोती फलेगा, तो मोती तुम भेजेंगे फिर राधा रानी के लिए। तो माँ दशरथा नंद हंसने लगे, अरे अरे बोका तुम मोती कोई पेड़ में होता है, मोती तो सागर में होता है। तो नहीं नहीं मैं तो मोती लगाया ना, तुम देखो बहुत अच्छा मोती होगा, तुम एक काम करो, मैं जमीन में मोती लगाया तुम मेरे को दूध दो, दूध घालूंगा और मोती का पेड़ होगा। तो नेक्स्ट डे नंदा यशोदा का ले गए कृष्ण भगवान, तो जमीन पर मोती लगाए थे, तो देखा तो मोती से सब क्या होता है, पूजा निकाला है। तो कुछ दिन के बाद साथ साथ वो पेड़ हो गया बहुत मोती, हाँ कॉल कर गया। तो राधा रानी को मालूम हो गया, गोपियों को मालूम हो गया। तो कृष्ण ने उसी का बगीचा बनाया। तो इससे पहले क्या हुआ था, एक दिन तो गाभियों को वो लोग डेकोरेट करते थे, डेकोरेट है क्या सजा देते थे। तो गोपियों ने गाभियों को बहुत मोती से सजाए थे राधा रानी। तो कृष्ण गए गोपियों को बताए, तो मेरे को कुछ मोती दो, मैं मेरा गाभियों को धवली समली मेरा गाभियों को मैं सजाऊंगा तो नहीं तुमको मैं हम लोग मोती नहीं दूंगा। तो एक टूटा वाला एक मोती दिया जाए तो किसी ने बताया तुम मेरे को मोती नहीं देता ठीक है मैं तुमको मोती दिखाऊंगा ऐसे। तो उसके बाद ऐसा हो गया भगवान कृष्ण मोती का ताक किए और बहुत वैरायटी मोती हो। तो गोपी ने तो कहो कृष्ण का इतना मोती हो गया तो लोग को मालूम है कि कृष्ण जो मोती था तो जमीन में लगाए और मोती से और फिर मोती फल। तो गोपी लोग ने क्या किए उनका घर में जितना मोती था इस सब मोती लेके जमीन में लगा दिए। जमीन में लगा दिए वो पिता माता जी को मालूम नहीं था छुपा के लगा दिए। तो लोग ने सोचा और तो बहुत मोती होगा तो मैंने हम लोग घर में ले आएंगे तो रात को जमीन में लगा दिए। तो कृष्ण क्या किए बोल सब बोला गए सब लेके भाग गए चुरा के ले गए। तो पौर्णमासी को पूछे थे जब कृष्ण का सा मूर्ति हुआ तो हम लोग ऐसा मूर्ति मिलेगा। पौर्णमासी ने बताया थे इसका कृष्ण मूर्ति रोपण किया था उससे हुआ और उसमें दूध झाला था। तो जितना गोपी गोपियों ने दूध बेचने के लिए मथुरा ले जाते थे तो दूध बेच नहीं बेचते थे सब मूर्ति में डालते थे मूर्ति फलेगा। और घर वाले लोग घर का लोग घुसा करके क्या होता है दूध ले जाता है पैसा की तरह आता है मैं पैसा है या मूर्ति फलेगा। और घर में बात करें कुछ मूर्ति नहीं आवाजर नहीं सब माटी में लगा कि ये लोग सोचते मूर्ति फलेगा। तो कुछ दिन के बाद में गए देखे मोती से पैदा पैदा हुआ नहीं हुआ उसमें से विषाक्त सब पेड़ उठा हाँ पेड़ विषाला पेड़ सब उठा है। तो पूर्णिमा से पूछा पूर्णिमा जी क्या हुआ हम लोग मूर्ति लगाया ये कि विषाला पेड़ आ गया इधर। तो बोला था तुम कृष्ण को पैसा हुआ था कृष्ण का हाथ में सिक्योरिटी रखा था गार्ड दिया था और तुम गार्ड रखा नहीं था गार्ड रखना था रखना था। तो वो लोग सब दुखी हो गई तो अभी क्या करेंगे अभी घर कैसे जाएंगे कैसे उस लोग मूर्ति दिखाएंगे मूर्ति तो नहीं हुआ। और कृष्ण उधर बहुत मोती लेके मोती का मार्केट बैठा दिया एक मार्केट लगा दिया तो लाल मोती ब्लू मोती ग्रीन मोती सब मोती लेके बहुत बास्केट में भर के मार्केट लेके बैठा दिया। तो राधा रानी सब गुप्त को मूर्ति चाहिए ना तो घर में कैसे जाएंगे। तो राधा रानी ने बताए एक कुत्ती को पूछे बोले कि दो तीन गोपी जाओ तेरे बोलो कुछ मोती देने के लिए। और जब गोपी लोग गए कृष्ण लोग खेलने शुरू कर दिए तुम मेरे को मोती नहीं थे एक छोटा वाला मोती दिए थे तो बहुत बोलते थे नहीं उसी गोपी को बोलो वो गोपी आने से मैं मोती मोती दूंगा ऐसा करके एक छोटा वाला मोती दिए इसी को ले लो ये होगा ठीक होगा। तो ऐसा बहुत मिला विलास करते थे राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में। तो भगवान बहुत लीला करते थे तो लीला माधुर्य को जो भक्त होते हैं तो भक्त लोग आस्था तो लेकर भगवान की जो अनंत लीला है तो अनंत लीला से ब्रज गोपियों के साथ उनका जो लीला ये बहुत माधुर्य मंडित होता है। तो काल जो मैं बताता था चैतन्य महाप्रभु आके तो भक्त लोग को आनंद देने के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो कृष्ण लीला में तो मंजरी थे गोपी सखी थे वो तो सब लीला को हम लोगों ने प्रकट की ऐसा ऐसा लीला ब्रज में होता था। ऐसा बहुत सारी लीला है। जय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की श्रीमती राधा रानी की सर्वे भक्त वृंदा की निताई गोष धनात्मानंद
Oh, Thank you. Thank you.